ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुनसरी और सिरहा में प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले चार लोगों को शहीद घोषित करने का सरकार का फैसला। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सड़क, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय और सेवा प्रवाह सहित विभिन्न विषयों पर सांसदों ने सरकार का कराया ध्यानाकर्षित। रौथट की लालबकैया नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे हुए लापता और सीरियाई अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मृत्यु दंड की सुनाई सजा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सुनसरी और सिरहा जिलों में हुए प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने वाले 4 लोगों को शहीद घोषित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए सुनसरी जिले के ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहता तथा सिरहा जिले के गणेश कुमार यादव को शहीद घोषित करने का फैसला किया है। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने यह जानकारी दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक ने नेपाल में आयात या उत्पादित बिजली से चलने वाली एम्बुलेंस और शव वाहनों पर लगाने वाले स्वच्छ बुनियादी ढांचा निवेश शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर में पूरी छूट देने का भी फैसला किया है। मंत्री पोखरेल ने बताया कि बैठक ने वैदेशिक रोजगार बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक पद पर 12 के निर्मल कुमार उप्रेती को नियुक्त करने का फैसला किया है। इसी तरह पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल की अध्यक्षता में गठित एनसेल के शेयर खरीद बिक्री संबंधी अध्ययन तथा जांच रिपोर्ट 2080 को सार्वजनिक करने का भी निर्णय किया गया है। इसी तरह पुर्तगाल सरकार को काठमांडू में कंसुलर कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला भी आज की मंत्रिपरिषद बैठक ने लिया है। सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों की ओर से पेश की गई रिपोर्टों को सार्वजनिक और कार्यान्वित नहीं किए जाने संबंधी संचार कर्मियों के सवाल पर मंत्री पोखरेल ने कहा कि सरकार को सौंपी गई कुछ रिपोर्टें सार्वजनिक की जा चुकी है और बाकी रिपोर्टों को भी क्रमशः क्रियान्वित किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने किसानों के लिए समय पर खाद और सिंचाई की व्यवस्था करने, बाजार में दिखाई दे रही खाना पकाने वाली गैस की कमी तथा महंगाई जैसे समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने बिजली शुल्क, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मालपोत कार्यालयों में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए समय पर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। सांसदों ने कहा कि किसानों को समय पर खाद और सिंचाई उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने भारत से आसानी से खाद की आपूर्ति की व्यवस्था करने और किसानों को सहज रूप से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। सांसदों ने कहा कि जनता की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है, नागरिकों को प्रभावी सेवाएं नहीं मिल रही है और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार के समय रहते नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की संसद में उपस्थिति की मांग किए जाने के बावजूद वे सदन में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सदन में उपस्थित होने के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोशाक और संसद की मर्यादा कायम रखने में भी विफल रहे। इसी बीच प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक की शुरूआत में भी विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बयान को सुधारने और उसे संसद की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटाने की मांग करते हुए विरोध किया। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने सरकारी दस्तावेजों को डिजिटलाइज करके सुरक्षित रखने पर जोर दिया। प्रतिनिधि सभा की सार्वजनिक लेखा समिति की आज हुई बैठक में पिछली वर्ष भदौ 23 और 24 गते जले दस्तावेजों के कारण 179 कार्यालयों का महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षण नहीं किए जा सकने के विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकारी दस्तावेजों को पहले डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वर्ष 2015 के भूकंप के दौरान सरकारी निवेश से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रहने के अनुभव का उल्लेख करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्री वागले ने यह भी जानकारी दी कि पिछले वर्ष भदौ 23 और 24 गते की असामान्य परिस्थितियों के दौरान राजस्व तथा कोष एवं लेखा नियंत्रक कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली प्रणालियां सुरक्षित रही थी। राष्ट्रीय सभा की विकास आर्थिक मामलों तथा सुशासन समिति की आज हुई बैठक में विशेषज्ञों ने देश की समृद्धि के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं के संबंध में अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ रोमकांत पांडे ने कहा कि नई पीढ़ी इंटरनेट के माध्यम से आय अर्जित करने में रुचि रखती है। उन्होंने डिजिटल प्रणाली की सुरक्षा के लिए आवश्यक नीतियां और कानून बनाने का सुझाव सांसदों को दिया। उन्होंने कहा कि केवल ऑनलाइन भुगतान करके सामान खरीदना और बेचना ही डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं है। पांडे ने तकनीक और ज्ञान पर आधारित ऐसी उत्पादन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बेहतर जुड़ाव हो। इसके लिए उन्होंने सरकार से आवश्यक सुरक्षा कानून बनाने का आग्रह किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। रौतहट के देवाही गोनाही नगरपालिका दो लक्ष्मीनिया स्थित लाल बकैया नदी में आज दोपहर नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबकर लापता हो गए। लापता होने वालों में लक्ष्मीनिया निवासी शेख अमरे आलम के 10 वर्षीय बेटे मोहम्मद रमतुल्लाह, इसी स्थान के शेख खुरौसेद की 10 वर्षीय बेटी रोशन खातून और शेख ओशी अख्तर की 10 वर्षीय बेटी सबनम खातून शामिल है। जिला पुलिस कार्यालय रौतहट के अनुसार वे दोपहर करीब 1:50 पर लालबकैया नदी में नहाने के दौरान डूबकर लापता हुए। सुरक्षाकर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी नदी में लापता बच्चों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार शाम तक बच्चों का कोई पता नहीं चल सका था और खोजी अभियान जारी था। निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की सहित आयुक्तों और नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की के बीच निर्वाचन और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कांतिपथ स्थित आयोग के कार्यालय में हुई बैठक में आगामी निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन के दौरान नेपाल पुलिस की भूमिका सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। नेपाली, मैथिली, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान तथा वरिष्ठ साहित्यकार डॉ राजेंद्र बिमल के अंतिम संस्कार में नेपाल सरकार की ओर से राष्ट्रीय सम्मान देने का फैसला किया गया है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड्गराज पौडेल गणेश नेपाल सरकार की ओर से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर राष्ट्रीय सम्मान अर्पित करेंगे। मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेल के अनुसार नेपाल पुलिस की एक टुकड़ी की ओर से भी उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। धनुषा के जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 10 निवासी वरिष्ठ साहित्यकार डॉ राजेंद्र बिमल का आज सुबह उपचार के दौरान प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में निधन हो गया था। जनै पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र तीर्थ स्थल गोसाई कुंड में हर वर्ष लगने वाले धार्मिक मेले की व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए 11 उपसमितियों का गठन कर व्यवस्थापकीय काम शुरू कर दिया गया है। लांगटांग राष्ट्रीय निकुंज के नेतृत्व में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, स्वयंसेवक परिचालन, स्वास्थ्य सेवा, प्रचार प्रसार, यातायात प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन, समन्वय एवं आंतरिक व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा दर निर्धारण समिति सहित 11 उपसमितियां गठित की गई हैं। समितियों के गठन के साथ ही मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई है। म्यागदी के अन्नपूर्णा गांव पालिका 6 पोखरे बगर स्थित धारखोला जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस में आज सुबह पहिरो गिरने से एक व्यक्ति लापता और घायल हो गया। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार पावर हाउस में काम कर रहे अन्नपूर्णा 6 निवासी 55 वर्षीय दीपक बरुवाल भूस्खलन में दबकर लापता हो गए। वहीं गौरीगंगा नगर पालिका 5 निवासी 31 वर्षीय सुरेंद्र बिक घायल हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया की एक आपराधिक अदालत ने आज पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के खिलाफ अपराधों और गृह युद्ध के दौरान किए गए गंभीर अपराधों के मामले में अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई। यह असद के खिलाफ सीरियाई अदालत का पहला बड़ा आपराधिक फैसला बताया जा रहा है। अदालत ने असद के छोटे भाई माहिर अल असद और उनके रिश्तेदार तथा पूर्व सुरक्षा अधिकारी आतेफ नजीब को भी मृत्युदंड सुनाया। नजीब अदालत में मौजूद थे, जबकि बशर और माहिर अल असद के खिलाफ फैसला उनकी अनुपस्थिति में सुनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार बशर अल असद को पूर्व नियोजित हत्या, यातना, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया गया। ये मामले सीरिया में 2011 से शुरू हुए करीब 14 वर्ष गृह युद्ध के दौरान हुई घटनाओं से जुड़े हैं। बशर अल असद ने वर्ष 2000 में सीरिया की सत्ता संभाली थी और दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों द्वारा दस्मिक पर कब्जे के बाद उनका शासन समाप्त हुआ। इसके बाद वह सीरिया छोड़कर रूस चले गए, जहां उन्हें शरण मिली। फैसले के बाद सीरिया के कुछ हिस्सों, विशेषकर दारा में लोगों ने फैसला का स्वागत किया। दारा को 2011 में असद सरकार के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह फैसला सीरिया में संक्रमणकालीन न्याय और पूर्व शासन के दौरान हुए कथित मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुनसरी और सिरहा में प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले 4 लोगों को शहीद घोषित करने का सरकार का फैसला। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सड़क, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय और सेवा प्रवाह सहित विभिन्न विषयों पर सांसदों ने सरकार का कराया ध्यानाकर्षित। रौतहट की लालबकैया नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे हुए लापता और सीरियाई अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सुनाई मृत्युदंड की सजा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।